ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में स्मार्ट क्लासरूम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार का दिल्ली के चारों कचरा डंपिंग क्षेत्रों को खत्म करने का संकल्प। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने गैस पाइपलाइन सुविधाओं के लिए दिल्ली सचिवालय में इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नोएडा में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के साथ साइबर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया और मौसम विभाग ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। अगले 4-5 दिनों में राजधानी में मध्यम वर्षा का अनुमान। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। दिल्ली सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में स्मार्ट क्लासरूम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कैबिनेट ने 5 चरणों में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए करीब 19,000 अतिरिक्त स्मार्ट क्लासरूम बनाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इससे वर्ष 2029-30 तक शहर में कुल स्मार्ट क्लासरूम की संख्या 21,412 हो जाएगी। मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि एक व्यापक डिजिटल कक्षा विस्तार योजना का अनावरण किया गया है, जिसकी शुरुआत 75 सीएम श्री स्कूलों में करीब 2,500 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड की स्थापना के साथ होगी। इसके अतिरिक्त 53 करोड़ रुपए की एकीकृत जिला परियोजना निधि को भी मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसी विकास परियोजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराना है जो बुनियादी ढांचे, सामुदायिक सुविधाओं और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित हो। मुख्यमंत्री ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि ये योजनाएं दिल्ली के जमीनी स्तर पर विकास को गति देंगी। सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने और राष्ट्रीय राजमार्गों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। देश में अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर 4,78,00,000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गलियारे पर आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत वृक्षारोपण के बाद एक जनसभा में ये बात कही। श्री गडकरी ने बताया कि दिल्ली में 4 कचरा डंपिंग क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार ने नष्ट करने का संकल्प लिया है।
दिल्ली में 4 कचरे की टेकड़ियां है और ये पूरी टेकड़ियां जो है ये नष्ट करने का हमने संकल्प किया है और इसलिए आने वाले समय में जो रोड डेवलपमेंट होगा, पूरे देश में अभी तक हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया है, जिसके कारण गाजीपुर के टेकड़ी का जो हाइट थी वो 7 मीटर से कम हुई है। जो हमारे क्रैश बैरियर है हमने वो बाम्बू के बनाए हैं और 20 किलोमीटर कम से कम उसके भी पूरे हुए हैं।
श्री गडकरी ने कहा कि भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग बन गया है।
मैं जब इस विभाग का मंत्री बना तब पूरे दुनिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारा नंबर करीब 13-14वां नंबर था, पर हमारे यहाँ अभी इतने गति से प्रगति हो रही है कि अभी हमने जापान को पीछे डालकर हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं। करीब 22 लाख करोड़ की हमारी ऑटोमोबाइल इकोनॉमी बनी है। ये जो इंडस्ट्री है इसकी विशेषता यह है कि देश में 4.5 करोड़ युवाओं को इसने रोजगार दिया है। राज्य सरकार और भारत सरकार को जीएसटी के माध्यम से सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली ये इंडस्ट्री है। हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी इसी इंडस्ट्री के कारण होता है।
दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने आज गैस पाइपलाइन सुविधाओं के लिए दिल्ली सचिवालय में इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में विकास मंत्री ने अधिकारियों को करावल नगर में गैस परियोजना को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मिश्रा ने कहा कि इस संदर्भ में यदि कहीं भूमि संबंधित समस्या आएगी तो स्थानीय निवासी कल्याण संघ RWA की मदद से इसे हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाइप नेचुरल गैस के जरिए करावल नगर में प्रत्येक घर तक स्वच्छ और प्रभावी ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज रोहिणी सेक्टर 20 में सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य का उद्घाटन किया। इसके अलावा श्री सिंह ने क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में चल रहे सड़क सुदृढ़ीकरण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण भी किया। उन्होंने सड़क पर बने गड्ढे, टूटी नालियां, जाम सीवर लाइनें और जलभराव जैसी गंभीर समस्याओं का प्रत्यक्ष रूप से आकलन किया। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के जेजे कॉलोनी ए ब्लॉक पार्क में सीवर मेन लाइन के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कार्य स्थानीय निवासियों की मांग और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को समझते हुए शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्षों से लंबित इस समस्या का समाधान अब धरातल पर उतरता दिख रहा है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने आज मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिलाधिकारियों और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्री सूद ने बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यवस्थाओं का आकलन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास परिसर में हाउस ऑफ हिमालयाज के विक्रय केंद्र की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि इससे न केवल उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति देश भर में पहुंचेगी बल्कि स्थानीय उत्पादों को भी नए बाजार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में बने प्राकृतिक और हस्तनिर्मित उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना है। दिल्ली विधानसभा परिसर में बृहस्पतिवार को एक विशेष शैक्षणिक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसका विषय स्वतंत्रता पूर्व भारत में संसदीय व्यवस्थाएं और स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सदस्यों की भूमिका है। संगोष्ठी का उद्देश्य वर्ष 1911 से 1946 तक विदेशी शासनकाल भारत में संसदीय संस्थाओं के विकास की पुनर्समीक्षा करना है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
संगोष्ठी के अंतर्गत दो शैक्षणिक सत्र आयोजित किए जाएंगे जिनका संचालन दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर करेंगे। पहले सत्र में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में राष्ट्रवादी नेताओं की भूमिका, पब्लिक सेफ्टी बिल और विधायी स्वायत्तता तथा पंडित मदन मोहन मालवीय की केंद्रीय विधान मंडल में भूमिका विषयों पर चर्चा होगी। दूसरे सत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्माण में केंद्रीय विधानसभा की भूमिका, अस्थायी औपनिवेशिक राजधानी के गठन की प्रक्रिया और आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित मदन मोहन मालवीय का योगदान विषयों पर प्रस्तुतियां होंगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह ऐतिहासिक चिंतन आज के लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय संस्कृति में भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता से पहले के भारतीय विधायकों द्वारा प्रदर्शित नैतिक नेतृत्व, संवैधानिक तरीकों में विश्वास और सार्वजनिक सेवा का भाव आज भी प्रेरणादायक है। इस संगोष्ठी के माध्यम से दिल्ली विधानसभा भारत की संवैधानिक परंपरा की विरासत को संरक्षित रखने और उन महान व्यक्तित्व को सम्मानित करने के अपने संकल्प को दोहराती है जिन्होंने भारत के संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
हज समिति ने हज 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। हज यात्री आधिकारिक हज पोर्टल या हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि आवेदक के पास आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले जारी किया गया भारतीय पासपोर्ट होना अनिवार्य है और वो कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक वैध होना चाहिए। समिति ने आवेदकों को ये भी सलाह दी है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी तैयारियों पर ध्यान से विचार करें। मृत्यु या गंभीर चिकित्सा स्थिति को छोड़कर आवेदन रद्द करने पर जुर्माना लगेगा। इस बीच दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने आवेदकों से अनुरोध किया है कि वे पंजीकरण निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार अपना पंजीकरण पूरा करें। सुश्री जहां ने कहा कि अगर लोगों को इस संबंध में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो वे राजधानी के तुर्कमान गेट स्थित दिल्ली हज कमेटी के कार्यालय में आ सकते हैं।
जो भी पंजीकरण करना चाह रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा हो या कोई परेशानी हो तो दिल्ली स्टेट हज कमेटी में हमारा कार्यालय उनके लिए खुला है। आप आइए, स्टाफ आपकी पूरी सहायता करें। जी हाँ, पंजीकरण ऑनलाइन होंगे। उसके बाद जो है फिर ड्रॉ की प्रक्रिया होगी, वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा की जाती है। लास्ट डेट है 31 जुलाई। अभी जो है कोटा वगैरह वो सब अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी उच्च स्तरीय बैठकें होंगी, माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू साहब भी जो है मीटिंग्स वगैरह करेंगे और जो होगा इंशाल्लाह अच्छा हो। जैसे कि मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हज सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है और हो रहा है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नोएडा में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के साथ साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। जांच एजेंसी ने नोएडा में 3 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें नोएडा से संचालित एक कॉल सेंटर भी शामिल है। तलाशी के दौरान फर्जी कॉल सेंटर, नकली वेबसाइट, हाईटेक सॉफ्टवेयर के जरिए विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जाने वाले अनेक फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। फर्स्ट आइडिया नाम से संचालित इस कॉल सेंटर से बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सार्वजनिक संबोधन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नामों का गलत उच्चारण करके उनका अपमान करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की महिला और दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।
आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आदिवासी विरोध मानसिकता। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता। जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार के संरचनात्मक सुधारों और नीतिगत उपायों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था सशक्त बन रही है। भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आय समानता में वैश्विक स्तर पर भारत को चौथा स्थान दिया गया है, जो बड़े गर्व की बात है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बैंकों को निष्क्रिय प्रधानमंत्री जनधन खातों को बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि निष्क्रिय जनधन खातों पर नजर रखी जाती है और बैंकों को खाताधारकों को खाते को सक्रिय करने के लिए संपर्क करने की सलाह दी जाती है। मंत्रालय ने बताया कि जनधन खातों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और उसके समक्ष बड़ी संख्या में निष्क्रिय खातों के बंद होने का कोई मामला नहीं आया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने वेवएक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत प्रतियोगिता की शुरुआत की है। ये राष्ट्रव्यापी पहल भारत के अग्रणी एआई स्टार्टअप को भारतीय भाषाओं में पाठ्य इनपुट से ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक सामग्री के निर्माण के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करती है। इसके लिए 30 जुलाई तक कला सेतु चुनौती पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और आवेदन किया जा सकता है। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने आज वासुदेव घाट की व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में तय किया गया कि पीने के पानी की व्यवस्था, स्वच्छ और व्यवस्थित शौचालय तथा श्रद्धालुओं के बैठने और वस्त्र परिवर्तन हेतु कार्यालय स्थान की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि वासुदेव घाट केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में कल तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आईएमडी वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि आने वाले 4-5 दिनों में राजधानी में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है।
दिल्ली के लिए भी आज हमारा फोरकास्ट है लाइट टू मॉडरेट है, लेकिन कल थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ सकती है, ज्यादा रेनफॉल कल से बढ़ने का अनुमान है। उसके बाद फिर रेनफॉल थोड़ा कम होने का अनुमान है 10 तारीख से, लाइट रेनफॉल एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं आने वाले 4-5 दिनों में चलता रहे।
राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में स्मार्ट क्लासरूम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सरकार का दिल्ली के चारों कचरा डंपिंग क्षेत्रों को खत्म करने का संकल्प। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने गैस पाइपलाइन सुविधाओं के लिए दिल्ली सचिवालय में इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नोएडा में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के साथ साइबर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। और मौसम विभाग ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।